च चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषये नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्त्याविहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द। मैं सबसे प्रथम अपने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सप्तम भक्ति प्रज्ञान के केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में सत बार दंडवत प्रणाम करते हुए उनके श्री चरणों में अपने हृदय की आंतरिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी के आज 100 वर्ष पूर्ति का अवसर है। वे हमारे शिक्षा गुरु भी हैं, सनातन धर्म के पाश्चात्य देशों में हमारे गौरवाणी और सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए एक अग्रदूत थे, सरल वैष्णव थे। आज उनके चरणों में हम अपने हृदय की पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात सभापति महोदय, उपस्थित त्रिरंडी पादगण, हमारे MLA श्रीमती उर्मिला जी और हमारे महामंडलेश्वर जी, वैष्णवगण एवं सज्जन वृंद, आपके चरणों में मैं यथायोग्य अपना अभिवादन ज्ञापन करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि सोरो क्षेत्र में हम भगवान बरादेव जी के क्षेत्र में उपस्थित हुए। बहुत दिनों से इच्छा थी, पिछले वर्ष भी यहाँ पर आने का सौभाग्य हुआ। यह स्थान सतयुग से क्या अनादि काल से एक पवित्र तीर्थ है। इसमें भगवान का अवतार हुआ और बड़े बड़े सिद्ध भक्तों का भी यहाँ पर आगमन और अवतार हुआ। बड़े बड़े विद्वान लोग इस क्षेत्र में पधारे, तुलसीदास जी भी यहीं पर आए, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, राधा कृष्ण मिलित तनु भी इस क्षेत्र में आए, गंगा में स्नान किया और अपने भावों को इस जगह भी प्रचार किया। इस तरह से हम देखते हैं कि समस्त युगों में यह स्थान बहुत पवित्र रहा है। विशेषकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पवित्र कृति तीर्थ में हमें आने का सौभाग्य मिला, ये हम अपना परम सौभाग्य समझते हैं। आज यह धर्मसभा श्री चैतन्य महाप्रभु के 500 वर्ष ये पूर्ति होने वाली है, हो गई। अभी फाल्गुन महीना जो चला गया उसमें 500 वर्ष वो पूरा होगा। इधर में उन्हीं के परम भक्त नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी भी इस धराधाम में प्रकटित हुए और उन्हीं का वाणियों का सनातन धर्म का उन्होंने विश्व में सर्वत्र प्रचार किया। आज उनके भी आविर्भाव का 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है। इसीलिए केवल भारतवर्ष में ही नहीं, देशों विदेशों में भी श्री चैतन्य महाप्रभु की पंचशती और हमारे इस महापुरुष भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी की ये शताब्दी देश और विदेश में सर्वत्र ही मनाई जा रही है। क्यों मनाई जा रही है? हम लोग आज ये 500 वर्ष में के पश्चात अथवा 100 वर्ष पश्चात हमें एक मौका मिला है, हमें अवसर मिला है कि हम लोग यह विवेचन करें कि हम उनकी शिक्षाओं से आज कितने दूर अथवा निकट हैं। महापुरुषों का अवतार या भगवान का अवतार किस विशेष कारण से होता है? श्रीमद्भागवत और शास्त्रों में, समस्त शास्त्रों में, वेद उपनिषद इत्यादि में श्रीमद्भागवत को अल्प प्रमाण माना है। यो तो वेद शास्त्र ही सभी प्रमाण है, किंतु उनमें भी वेद को, भाव को, गुण रहस्य को, तात्पर्य को प्रकट करने वाला श्रीमद् जो भागवत है अमल पुराण माना गया है। तो इसमें अधिक अच्छी तरह से विवेचन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि जीव भगवान का अंश है। केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र भगवान का अंश है और उनके सेवक और सेविका है। भयं द्वितीयाद अभिनिवेश पश्चात ईशात ते तस्य विपरिजोय स्मृति। जो ही भगवान को ये जीव भूल जाता है, जो भगवान का अंश है, सनातन है, आनंद स्वरूप है ये, किंतु जो ही भगवान से ये विचित हो पड़ता है तो ही उसकी स्मृति विपर्जय हो जाती है, अर्थात माया में चली जाती है। कहां भगवान के चरणों में उसकी रति थी, प्रीति थी, वो बदल जाती है। ये प्रीति ही जीव का अपना स्वरूप धर्म है, जब श्रीमद् भागवत में विचार करते हैं तो इसके द्वारा देखा जाता है। जो शास्त्र में लिखा गया कि धारण करने से ही धर्म है, यह बात थी, उसमें सब विषयों का सामंजस्य इसमें आ जाता है। कहिए कैसे विचार किया? श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको इस प्रकार से लिया, वो सनातन धर्म के वो रक्षा करने वाले थे, तो उन्होंने कहा धर्म कोई अलग चीज नहीं है। धर्म जब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु होती है तो उसके गठन के साथ ही साथ में उसका धर्म भी नित्य सहचर रूप में प्रकटित होता है। जैसे एक जड़ पदार्थ के रूप में देखें आग, जब से आग है तब से उसमें दाही का शक्ति है। वो आग आग नहीं जिसमें दाही का शक्ति नहीं है, और उस दाही का शक्ति को आग से कभी भी अलग नहीं कर सकते। जो ही करेंगे त्यों वो वस्तु नहीं रहेगी। इसलिए धारण का तात्पर्य आग को धारण करती है दाही का शक्ति। वह सूर्य सूर्य नहीं है जिसमें प्रकाश नहीं है, दाही का शक्ति नहीं है, दूसरों को प्रकाश नहीं कर सकता तो वो सूर्य नहीं है। इसलिए जैसे बर्फ है, हिम है, हिम में से यदि उसमें से ठंडापन को आग अलग कर दीजिए तो वो ठंडापन नहीं, वो बर्फ नहीं रह सकता है। पानी से तरलता को अलग नहीं कर सकते हैं, यदि कर दें तो वो कोई वस्तु ही नहीं रह जाएगा। इसलिए हम जीव जो हैं, जीव के गठन के साथ ही साथ में, जीव का गठन नहीं हुआ ये अनादि काल से है, नित्य काल से है, तो जब से ये प्रकटित हुआ, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यहां सहज का तात्पर्य है सहजायते, ये तात्पर्य है सहज सरल, यहां नहीं वही सरल सरल और सहज है जो उसके नित्य सत्ता के साथ में सब समय मौजूद है। इसलिए जीव का ऐसा क्या चीज है जो कि जितने भी जगत में प्राणी हैं, जीव मात्र हैं, उनमें कॉमन टू ऑल हो, उसमें सब में हो, उसके बिना जीव की सत्ता नहीं रह सकती है, तो वो क्या चीज है? तो इस पर श्रीमद्भागवत इत्यादि पर विचार करके देखा जाता है। श्रीमद्भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित महाराज जी को, स वही पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति रधक्षजे अहे सूर्य अप्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्धति। जीव का धर्म भगवान के प्रति प्रीति है, जिसको साधारण रूप में अभी साधन के समय में उसको भक्ति कहते हैं, और यही भक्त पहले यह श्रद्धा उसका बीज होता है, पहले श्रद्धा, इसके बाद में साधु संग, साधु संग के बाद में भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इसके बाद में रति, और रति यही विकसित होने के बाद में यह प्रेम रूप में परिणत होता है। यही जीव का अपना खास स्वरूप है। जीव का भगवान के प्रति जो प्रेम है, एकादश स्कंद में भी ऐसा बतलाया गया, प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा, भगवान के प्रति जीवों का प्रेम होना चाहिए। जीव और जीव के प्रति प्रेम नहीं होता, उसके प्रति सख्य हो सकता है, सेवा भावना हो सकती है, उपेक्षा इत्यादि हो सकता है, किंतु प्रेम जहां पर है यह जीव का स्वरूप है, नित्य स्वरूप, जीवेर स्वरूप है नित्य। कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा जो प्रत्येक जीव का, उसको माने और न माने, प्रत्येक जीव का स्वरूप ही है कि भगवान के प्रति उसकी सेवा की भावना या प्रेम। इसलिए बतलाया धर्म सुनिश्चित अनुपुंसान विश्व सेम तथा सुजा नोत्पाद जदिगतिम समय भी के। पहले श्लोक में बतलाया गया भगवान के प्रति चित्त की वृत्तियां, जो प्रेम है, सेवा वृत्ति है, तन मन और वचन समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान के प्रति अभिच्छिन्न तैज धार आवत गति से भगवान के चरणों में लगे, ये धर्म है। यदि ये नहीं है तो जीव मात्र का ये धर्म नहीं है। जहां भी जाएंगे आप देखेंगे कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, कोई भी जीव सुख और आनंद चाहता है, कोई ऐसा जीव ही नहीं है जो आनंद नहीं चाहता है। ये आनंद ही जीव का स्वरूप और धर्म है। ये प्रेम जहां नहीं है वो आनंद नहीं है, प्रेम और आनंद पर्यायवाची शब्द है। सुख में कुछ गड़बड़ी है, सुख में अपने इंद्रियों की भावना कुछ बनी रहती है कि मैं इसका सुख का भोगता हूं, इसमें विषय नहीं है सुख में, सुख में विषय नहीं, केवल आश्रय है, जीव उसका आश्रय होता है, मैं सुख भोगूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने एक शब्द में थोड़े से ही बतलाया आत्म इंद्रिय प्रतीक्षा तारे बोले काम, अपने इंद्रियों के सुख की भावना जहां पर है ये काम है, ये प्रेम नहीं है। और भगवान के लिए जो कुछ भी करते हैं, भगवान की सेवा के लिए जो कुछ भी करते हैं, इसी का नाम है प्रेम, अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा। तो जब तेज धारा मतलब विच्छिन्न गति से जीव की प्रीति भगवान के चरणों में लग जाए, और यदि यह नहीं होता है तो पंडश्रम ये सब कुछ है, जीव का वो धर्म नहीं है। हमारे स्वामी जी ने भी बतलाया ये जीव हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई अथवा मनुष्य कांग्रेस कम्युनिस्ट ये सब नहीं है, हम लोग हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि ना हम विप्रो न च नरपति नापि शूद्रो न वैश्य ना हम वर्ण न च गृहपतिर्नो वनस्थो जतिर्वा किंतु प्रदन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपीर्भर्तु पदकमलयोर दास दास अनुदास। हमारा ये जीव का स्वरूप है भगवान का दास, इसलिए चैतन्य चैतामृतकार ने या शास्त्रों में या श्रीमद् भागवत में इसी को बतलाया गया। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं अहो भाग्यम महो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकिसाम जन विक्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन पूर्ण ब्रह्म कृष्ण चंद्र जी है, और उनके साथ में जीवों का मित्रता कैसा, किसी के वो परम सखा है, किसी के वो लड़के हैं वात्सल्यता से उनकी सेवा करते हैं, किसी के वो प्राण प्रियतम है, गोपियों के प्राण प्रियतम है, किसी के दास सखा, किसी के वो प्रभु है, जीव उनका दास है। ये क्या प्रकार के संबंध स्थिर किया गया, विशेष करके श्री रूप गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में इसका विशेष रूप से वर्णन किया। इसलिए ये सब विचारों को देख करके हम इस कंक्लूजन पर आते हैं, हम इस पर आते हैं, दिशा पर आते हैं कि जीव मात्र ही, कोई माने और न माने, सभी प्रभु के दास और दासी हैं। जब जीव भयं इत्याद अभिनिवेशता, जब भगवान को छोड़ करके अपनी स्वतंत्रता का दुर्व्यवहार करता है और माया में फंस जाता है और इस शरीर को कहता है कि मैं हूं और यह संपूर्ण हमारा है, मैं और मोर सोर तय माया जय बस किन्ह जीव निकाया, ये तुलसीदास जी रामायण में बतलाते हैं कि जब मैं कौन हूं, मैं कृष्णदास हूं, यह तो ठीक है स्वरूप का धर्म है, मैं कृष्ण की प्रियतमा हूं, मैं कृष्ण की मैया हूं, मैं कृष्ण का पिता हूं, ये तो ठीक है, नंद बाबा का यह स्वरूप धर्म है, गोपियों का वो स्वरूप धर्म था। इसलिए गोपियों को कृष्ण भी कहते हैं अंत में बाध्य होकर के न पा रहे हम निर्वध संयुजन इत्यादि श्रीमद् भागवत ने कहा है। उद्धव और ब्रह्मा जैसे लोग भी कहते हैं आसाम हो चरण रेण दिशा हम श्याम वृंदावन एकम गुलमन औषधिना, उन गोपियों की चरण धूलि में अपने अपने सिर पर अभिषिक्त करना अपने जीवन की कृतार्थता समझते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ब्रज में कहीं भी लता और गुल्म के रूप में यदि मैं पैदा हो जाऊं और वहां पर गोपियों की चरण धूलि हमारे ऊपर में यदि पड़ जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। जिसके प्रेम से बसीभूत कृष्णचंद्र जी हैं, श्रुतियां आज तक नहीं पा सकी किंतु गोपियों ने उनको अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, मट्ठे पर इतने भर तिल भर मट्ठे पर उनको नचा दिया। यशोदा जी ने उनकी कमर बांध दी ओखल में, कृष्ण जी रो रहे हैं, उनको धमका रही है और परब्रह्म रो रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं देखा गया। और सब जगह देखा गया भक्त लोग भगवान की आराधना करते हैं और श्रीमद् भागवत ने संदेश दिया ये नहीं, भगवान ही भक्तों की आराधना करते हैं। इसलिए आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम तस्मा परम देवी तदीयानाम तदीयानाम माने गोपीनाम, गोपियों के एकदम वशीभूत हो जाते हैं, उनकी ऋण को कभी नहीं चुका सकते हैं। इसलिए जब जीव भगवान से जबकि भूल गया भगवान को अपनी स्वतंत्रता के दुर्व्यवहार के कारण, तो भगवान को जगत में आना पड़ता है। इसलिए जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भाव विभाग, इसी धर्म का जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, ये धर्म नहीं जागतिक और व्यवहारिक सत्य से अथवा ये जो धर्म कहे जाने वाले सिख और हिंदू और ईसाई ये सब धर्म के लिए नहीं, जब अपने स्वाभाविक धर्म से अपने सर्वगत आत्मधर्म से जब विचित हो पड़ता है तो माया में वो फंस जाता है। भगवान देखते कि हमारे प्रिय जीव आज हम सब भूल करके और इस संसार में पड़े हैं और सर्व धर्म को भूल चुके हैं और तथाकथित जो धर्म है सर्वधर्मान प्रत्यज्ञ जो गीता में कहा गया उनको छोड़ने के लिए उन्हीं को अपना धर्म मानने लगे हैं, जो कि साधारण संसार में जीने की एक रीतियां और नीतियां मात्र हैं, सर्व धर्म नहीं है। इसलिए भगवान जगत में अवतीर्ण होते हैं, जितने प्रकार के भगवत अवतार हुए हैं उन समस्त अवतारों के उपादान के विषय को अथवा जो जगत में दान करने के लिए भगवान आए जीवों को देने के लिए, कैसे कहते हैं कि भगवान ऊपर से नीचे उतरते हैं इसलिए उनका नाम अवतार है और जीव नीचे से साधन करके भगवान की तरफ में चलता है। इधर से तो जीव कहां जाना चाहता है, भगवान के चरण कमलों में, उसके अतिरिक्त और कोई शांति है नहीं उनको, और उधर भगवान जीवों के लिए ललायित होकर के उनके लिए नीचे उतर करके नीचे आते हैं जीवलोक में, ममईवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, वहां पर ये अवतरण करते हैं और जीव यहां से मचलते हैं उधर जाने के लिए। दोनों के बीच में जैसे गंगा का घाट होता है वहां पर भक्ति के घाट पर दोनों का मिलन होता है, जहां पर भक्ति नहीं है वहां पर भगवान और जीव का कभी भी मिलन कभी संभव पर हो नहीं सकता है। इस मिलन की स्थान भी ये भी एक है, यहां पर मेला लगता है, मेला माने क्या मिलन, किससे जीव का भगवान के साथ मिलन के लिए साधु संत लोग पधारते थे, शिक्षाएं देते थे, भगवान बराहदेव भी यहां पर आए, चैतन्य महाप्रभु भी आए, मिलन हुआ किसके साथ में जीव और भगवान का परब्रह्म का। और आजकल मेला का स्वरूप बिगड़ करके अब देखिए सिनेमा बायोस्कोप और ये सब चीजें होने लगी, साधु सम्मेलन इत्यादि होता था, नैमिषारण्य में होता था, काशी में होता था, प्रयाग में होता था और सर्वत्र यही सब होता था, धर्म सम्मेलन में जीव के स्वरूप धर्म का ये सब विवेचन होता था और ये मिलन कहलाता था। हम अपने स्त्री के साथ मिलने आए, कोई अपने कुटुंबी लोग स्नान करने के लिए मिल गए, ये मिलन नहीं, मिलन मुख्य उद्देश्य था कि हम भगवान के साथ में हमारे जीव का कैसे मिलन, जब तक नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण किसी तरह से नहीं है। तुलसीदास जी भी कहते हैं बारी मथे पर हो ये घृत सिकता ते बरते बिनु हरि भजन न भव करिया यह सिद्धांत अपे। कितना सुंदर धनुमार के सिद्धार्थ कहा, बल्कि यही नहीं कहते हैं कि भले ही ये बर्फ है इससे आग पैदा हो जाए, हिमते अनल प्रगट बनी हुई कमट पीठ परु जाम ही दार, कमट के पीठ पर भले ही बात उग जाए, आकाश में भले ही फूल खिल जाए और भले ही अंधकार सूर्य को निकल जाए। नौ उदाहरण उन्होंने दिया है, संख्याओं में सबसे बढ़कर के नौ है, नौ उदाहरण वहां पर पेश किया और अंत में ये कहते हैं कि बारी मथे बनी हुई ये घृत, बालू को पीसने से रेती को पीसने से भले ही तेल निकल आए घी निकल आए, बारी मथे बनू हो ये घृत सिकता ते बनू तेल, और रेती से भले ही तेल निकल जाए किंतु बिना भगवत भजन के जो स्वरूप जीव का धर्म है भगवान के प्रति प्रेम, जब तक हम उसको नहीं मिलेगा तब तक सुख और शांति कदापि नहीं हो सकती है। इसीलिए भगवान जगत में अवतीर्ण होते हैं। जितने प्रकार के भगवान जगत में आकर के अवदान देते हैं उसमें कृष्ण सभी अवतारों का जो जितने विचार हैं सबको क्रोड़ीभूत करके और जगत में पधारे और वो भक्तों के लिए रोए। भक्तों के जसोदा जी के यहाँ देखिए, गोपियों के यहाँ तो यही कहते हैं कि ना पा रहे हूँ मेरे बदन से मिला। यहाँ तक राधिका जी के चरणों में प्रेम के लिए विकल हो जाते हैं, ने कैसे उनके प्रति भाव रखते हैं। ये प्रेम की लड़ाई है, प्रेम का दान देने के लिए आया, किंतु उसमें भी महाप्रभु उनकी कुछ कामनाएं रह गई। क्या कामनाएं रह गई? कृष्णचंद्र जी की उस लीला में पूरी नहीं हुई, राधाया प्रणय महिमा की दृश्य हुआ नहीं हुआ इत्यादि। बहुत समय हो जाएगा व्याख्या करने में, मैं अपने मूल विषय वक्तव्य विषय पर आऊंगा। चैतन्य महाकृष्ण की तीन प्रकार की वांछाएं रह गई। राधा जी की प्रणय महिमा कैसी है जो मुझको मुक्त कर देती है, मैं उनका ऋणी बन जाता हूं। मैं कितना सुंदर हूं, हमारी रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी कैसी है जो और अवतारों में नहीं है, इसका मैं स्वयं आस्वादन नहीं कर सका, इसका आस्वादन श्रीमती राधिका जी करती है। और आस्वादन करके राधिका जी को कौन सा सुख होता है ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं प्रेम का विषय हूं, वो अस्त्र है। इसलिए जब तक कि अस्त्र का भाव नहीं लिया जाए तब तक इसको आस्वादन नहीं किया जा सकता है। इसलिए राधिका जी के भाव और अंग कांति को लेकर के जगत में वे गौरांग रूप में चैतन्य महाप्रभु पधारे। उस समय उनके लीला परिकर गदाधर पंडित इत्यादि, हमारे महंत जी ने जो बतला, महामंडलेश्वर जी ने बतलाया, वो गदाधर जी के लिए, वो गदाधर जी क्या केवल न्याय के पंडित नहीं थे, वो तो श्रीमती राधिका जो राधिनी है राधिका जी थी। जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में आए, राधिका जी भी गदाधर पंडित के रूप में आए, बल्कि वो जो न्याय के संबंध में उन्होंने बतलाया जो तेज लेकर के गिरा दिए चैतन्य महाप्रभु, वो थे दूसरा न्याय के रघुनाथ भट्टाचार्य थे। तो सभी भी मंडलेश्वर जी ने जो कहा वो बात उस रूप में ना होता, नाम के भेद से कुछ नहीं होता है। तो इसलिए गदाधर पंडित जी जैसे ललिता, विशाखा, नंद महाराज और सभी लोग, कृष्ण के जितने भी परिकर थे सब लोग पुरुष रूप में ये जगत में आए और प्रेम का आस्वादन किया इन लोगों ने। उनके परिकरों में आज से करीब करीब 150 वर्ष पहले नित्य लीला प्रवृत्त ओम विष्णुपाद शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी जगत में पधारे, वो उनके नित्य परिकर थे। जब तक कृष्ण की शक्ति जगत में नहीं आए, उनके मूलभूत धर्म का, स्वरूप धर्म का प्रचार जगत में संभव पर नहीं है। नारद जी आए, भगवान के वो सत्तावेश अवतार थे। कपिल जी भी आए, सत्तावेश अवतार थे। जब तक कि ऐसा रूप नहीं, ऐसा शक्ति जगत में नहीं आएगी, या तो भगवान स्वयं आए अथवा उनकी शक्ति आए, तभी जगत में विशुद्ध धर्म का प्रचार होगा। और नहीं तो आजकल जैसे सिख धर्म का प्रचार हो रहा है, आजकल जैसे और लोगों का प्रचार चल रहा है, मार काट और यही सब उनका धर्म हो जाएगा, ऐसा ही होता है। इसलिए उनके नित्य परिकर लोग जब आते हैं, चैतन्य महाप्रभु का वाणी का, सनातन धर्म का, विशुद्ध प्रेम धर्म का चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रचार किया और कृष्ण के इन सब विषयों का आस्वादन किया। इनके परिकर के रूप में बड़े बड़े दिग्गज विद्वान लोग आए, बड़े बड़े सब लोग, पूज्यपाद उनमें से पूज्यपाद हमारे नित्य लीला प्रवृत्त ओम विष्णुपाद श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज भी अन्यतम थे। उनके साथ में पूज्यपाद भन महाराज भी विदेशों में गए और उन्होंने सर्वत्र यहाँ भारतवर्ष में और उधर प्रचार किया। पूज्यपाद नैनी महाराज, पूज्यपाद और भी सौसी महाराज, परम हमारे नित्य लीला प्रवृत्त भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी और ये सब परिकर थे। उन्हीं में से हमारे सब पुराने वाले चले गए, हमारे परम पूज्यपाद सभापति महोदय, हमारे नित्य लीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के ये शिष्य सबसे छोटे ये अभी रह गए और बाकी अब थोड़े से कुछ लोग विद्वान हैं। ये तो धीरे 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 उनकी पीढ़ी अब धीरे धीरे चली जा रही है। हम लोग का ये दुर्भाग्य है। तो उनमें से ये भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी एक अन्यतम प्रचारक थे और उनके परिकर थे। आज उन्हीं के संबंध में और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के माध्यम से धर्म आलोचना का विषय रखा गया है और हम इसका विवेचन करेंगे कि हम उनकी शिक्षाओं से कितने दूर हो गए हैं या निकट आए हैं। यदि हम निकट हैं तो विश्व का कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण इसमें है। और जितने हम उनसे दूर चले जाएंगे शुद्ध शिक्षाओं से, हम सनातन धर्म से, अपने स्वरूप धर्म से, भगवान से सदा के लिए दूर होते चले चले जाएंगे। ये जब आए बचपन में एक बड़े पहले ये एक समृद्ध सुशिक्षित कुल में इनका आविर्भाव हुआ, ब्राह्मण कुल में। इनके माता पिताजी ने इनका नाम रखा अतुलचंद्र बंदोपाध्याय। जोगमाया हमारे समय से जोगमाया नहीं, यह नाम रखवाया। अतुल कहते हैं किसको, जिसकी कोई तुलना नहीं है। संस्कृत में इसको कहते हैं असमर्थ, असम ऊर्ध, जिनके समान कोई नहीं है और बड़ा होने की तो बात ही क्या है। असमर्थ तत्व कौन है, कोई कहते हैं साधारण रूप में ये ब्रह्म, कोई कहते हैं आत्मा या परमात्मा, कोई कहते हैं भगवान तत्व। हम अपने वैदिक और ये शास्त्र विचारों के अनुसार में चल रहे हैं। बदंति तत्विदः सत्यम् यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। किंतु इसमें जब विचार हम करते हैं तो ब्रह्म तो साकार होता नहीं और ब्रह्म निर्विशेष कहलाता है और उसका गुण नहीं इसलिए निर्गुण है। तो जिसमें कोई गुण नहीं है, जो कि आकार धारण नहीं कर सकता है, जहां आकार धारण किया तो वो माया में फंस जाएगा, माया से आच्छादित हो जाता है और वो निराकार है, तो इसलिए इसको परम तत्व नहीं कहा जा सकता। इसलिए और आगे बढ़िए, इसलिए ब्रह्म के साथ साथ में परब्रह्म इत्यादि इसमें विशेषण लगाए गए। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ श्याम जगमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सना, पूर्ण ब्रह्म का। इसलिए तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई एक ब्रह्म है और कोई एक परब्रह्म अथवा पूर्ण ब्रह्म है अथवा स्वयं ब्रह्म है, नहीं तो ऐसे विशेषण दिया ही नहीं जाता। इसलिए यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि औपनिषदिक ब्रह्म जो है उसकी केवल अंग कांति है, किसके परम ब्रह्म का। वो परम ब्रह्म कौन है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। डंके की चोट में व्यास जी ने जो वेदों का विभाग किया, जिन्होंने उपनिषदों को प्रकाश किया, जिन्होंने 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 और पुराण, 36 पुराणों का प्रकाश किया, जिन्होंने वाङ्मय भारतीय वाङ्मय महाभारत और रामायण का इत्यादि का भी प्रकाश किया ने, और सबसे भी उनको भी संतुष्टि, गीता को भी इन्होंने प्रकाश किया, किंतु संतुष्टि नहीं हुई। किस लिए, नारद जी ने कहा भाई उनको इसलिए संतुष्टि नहीं हो रही है। उपाख्यान तो लंबा चौड़ा है, हमारे पंडित जी और सभी लोग जानते होंगे, मैं संक्षेप में थोड़ा सा ये बता रहा। तो उन्होंने भार देखा जब व्यास जी को तो आत्मप्रसाद नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई हमें आत्मप्रसाद क्यों नहीं। नारद जी ने कहा आपने कृष्ण चरित्र नहीं देखा, आपने रसो वैसा जो श्रीमद भागवत का जो रस तत्व है, परम तत्व है, इसकी आपने व्याख्या इसका नहीं की, आपने उसके लीलाओं का साधन नहीं कराया, उनके परिकरों का आपने वैशिष्ट नहीं बतलाया, इसलिए ये तो ठीक नहीं हुआ। इसलिए जब तक आप नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन, कौन से ब्रजेंद्र नंदन, चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय सद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना पति पदुर्गा कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण अपम प्रेमा पुनर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत्रो न पर। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर आराध्य है भाई, जो मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में छिप करके गए और फिर वहां जाए तो द्वारका भगे, मथुरा आकर के फिर द्वारका भग गए। तो ये द्वारकाधीश और मथुरानाथ और नंदनंदन एक नहीं है, आपके वसुदेव नंदन और देवकी नंदन क्या आराध्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तो तत्वतः एक, दो तो कोई तत्व ही नहीं है, एक ही है, किंतु उसके विभिन्न प्रकार के प्रकाश है, शक्ति के प्रकाश से उसके प्रकाशों का तारतम्य होता है। इसलिए ब्रजेंद्र नंदन में और द्वारकाधीश में लीलागत रसगत कुछ वैशिष्ट है एक ही वस्तु होने से भी। पानी और बर्फ एक नहीं कहा जा सकता है। आज खूब कुहरा पड़ रहा था, वो भी तो पानी ही है, तो कुहरे को पानी नहीं कह सकते हैं, पानी को बर्फ नहीं कहेंगे, बर्फ को पानी नहीं कहते, है एक ही चीज न। उसी प्रकार से भगवत तत्व एक होने पर भी इसके विचार सब दिए गए हैं। इसलिए ब्रजन नंदन जो श्याम सुंदर है वो रसो वैश्य है, उनकी लीलाएं हैं बड़ी मधुर लीलाएं हैं। श्रीमद्भागवत में उसका वर्णन जब व्यास जी ने किया नारद जी के उपदेश से सब वो कृतार्थ हुए और उन्होंने व्यास सुखदेव गोस्वामी को इसका पाठन पाठन कराया और उसका जगत में प्रचार कराया और उसी को श्रीमद्भागवतम पुराण अमलम प्रेम असमर्थ महान नहीं श्रीमद्भागवतम पुराण अमलम जग वैष्णवा नाम प्रियम जस्मिन ज्ञान विराग सहितम निष्कर्म आविष्कृतम तत्म विचारम करो भक्त्या विवेचन नर मनुष्य मात्र का उद्धार हो जाता है। शोक मोह भयापहा इत्यादि श्रीमद्भागवत में कहा गया इसका तो तात्पर्य ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर स्वयं भगवान है और यही परम तत्व है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि